अगली सुबह आहान की आँख खुली तो चाहत अभी भी उसके सीने पर सिर रखकर लेटी थी। रात को जो भी हुआ था उस बारे में आहान को सब कुछ याद था। चाहत को देखने के बाद उसकी नज़र अपने हाथ पर गई तो उस पर बैंडेज लगा हुआ था। आहान ने प्यार से चाहत के बालों में हाथ घुमाया और उसके फोरहेड पर किस किया। चाहत नींद में भी बड़बड़ा उठी। मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना मम्मा, काम पर तो जाना ही होता है, आज थोड़ी देर से चली जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। चाहत की बात सुनकर आहान के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और साथ ही वो ये भी समझ गया था कि काम की जिम्मेदारी के चलते चाहत को अक्सर जल्दी उठना पड़ता था। जितनी देर सोना चाहो उतनी देर तक आराम से सो सकती हो डॉल, मेरी लाइफ मुश्किल थी तो तुम्हारी लाइफ भी आसान नहीं रही होगी, कोशिश करूंगा कि अब तुम्हें हर्ट ना करूं, आहान धीरे से बोला और फिर उसने चाहत को बिस्तर पर लेटा दिया। रात को जो भी हुआ था आहान उसे बदल तो नहीं सकता था, लेकिन हाँ वो अपने किए की माफ़ी ज़रूर मांग सकता था। नहाने के बाद आहान सीधा किचन में पहुंचा। वो चाहत के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता था। किचन में आते ही उसने कुकिंग स्टाफ से कहा, आज मैं अपनी डॉल के लिए खाना बनाऊंगा, मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करनी है। आप सब लोग फ़िलहाल के लिए यहाँ से चले जाइए और गार्डन एरिया में जो टेबल है उसे ब्रेकफास्ट के हिसाब से थोड़ा स्पेशल अरेंज कर दीजिए। आहान के कुकिंग स्टाफ में काम करने वाले दोनों ही लड़के किसी होटल में काम कर चुके थे। उन्हें अच्छे से पता था कि किसी की डेट कैसे अरेंज करनी होती है। उन्होंने आहान की बात पर हामी भरी और गार्डन एरिया में चले गए। आहान किचन में खड़ा कुछ सोचते हुए से बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें खाने में क्या पसंद होगा, लेकिन लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए ब्राउनी और चोकोलावा केक बनाता हूँ। स्वीट खाने के बाद तुम्हारा मूड भी फ्रेश रहेगा। आहान तुरंत इसकी तैयारी में लग गया। उसे चाहत की पसंद के बारे में कुछ खास पता नहीं था, फिर भी उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट में काफ़ी कुछ बनाया था। ब्राउनी और केक बनने के बाद उसने चीज़ सैंडविच और हॉट नूडल्स बनाए। आहान लगभग एक से डेढ़ घंटे तक किचन में था। ब्रेकफास्ट बनने के बाद वो रूम में गया तो चाहत अभी भी आराम से सोई हुई थी। तुम्हें इस तरह आराम से सोते देखकर बहुत सुकून महसूस हो रहा है डॉल, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत बर्बाद हो, आहान ने खुद से कहा और फिर चाहत के पास आकर उसे प्यार से उठाने लगा। प्लीज़ गेट अप डॉल, ऑलरेडी इट्स 11 o'clock, इतना लेट तक सोना भी सही नहीं है, अगर तुम टायर्ड हो तो खाकर फिर सो जाना। आहान की आवाज़ सुनकर चाहत की नींद टूटी और फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर पर नहीं है। चाहत ने धीरे से मुस्कुराते हुए आहान को गुड मॉर्निंग विश किया और फिर उसके हाथ की तरफ देखकर पूछा, आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना, हम आज हॉस्पिटल चल सकते हैं, आप अच्छे से ड्रेसिंग करवा लेना। खुद इतनी तकलीफ़ में होकर भी मेरी केयर कर रही हो डॉल, हमेशा से यही सीखा होगा ना कि खुद की तकलीफ़ों को साइड में रख दो और सामने वाले पर ध्यान दो, पहले अपनी मॉम पर ध्यान दिया तो अब मुझ पर, आहान ने काफ़ी केयरिंग वे में कहा। एक पल के लिए चाहत चौंक गई, फिर उसे भी एहसास हुआ आहान जो कह रहा था वो सच था। वो खुद कितनी भी तकलीफ़ में हो लेकिन सब कुछ भूलकर अपने सामने वाले का दर्द दूर करने की कोशिश करती थी। मुझे ये करना अच्छा लगता है, चाहत ने जवाब में कहा। तुम्हें तो अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं पसंद, आहान सख्त आवाज़ में बोला। चाहत का मूड ऑफ ना हो इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, चलो अब जाकर नहा लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट रेडी किया है। वन मोर थिंग, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आहान ने बात को टालने के लिए कहा। उसने चाहत को अपनी बाहों में उठाया और उसे बाथरूम में छोड़ दिया। आहान बाहर जाते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए थे, मैं लेकर आता हूँ, फिर नहाकर उन्हें पहन लेना। अपनी बात कहकर आहान वहाँ से चला गया। आहान का बर्ताव देखकर चाहत को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जब वो गुस्से में नहीं होता था तो चाहत के साथ इतना ही स्वीट रहता था और उसकी अच्छे से केयर करता था। चाहत बाथरूम के अंदर चली गई तो वहीं आहान नीचे था। आहान ने चाहत की ज़रूरत का सामान मंगवाया था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था क्योंकि वो सब उसकी पसंद का था और वो चाहता था कि चाहत अपनी चॉइस के हिसाब से शॉपिंग करे। हाउस हेल्पर ने कुछ बैग आहान को दिए। आहान ने बैग खोलकर देखा और चेक करते हुए बोला, ओके, मैंने 5 नाइट ड्रेस मंगवाई थी, वो बिल्कुल ठीक से आई हैं, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं होगा क्योंकि रात को कुछ भी पहनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंफर्टेबल होना चाहिए। बाकी डॉल के इनर वियर से लेकर टॉबल्स तक आ गए हैं, ये उसके डेली एसेंशियल्स जिनमें शैम्पू क्रीम और बाकी चीज़ हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रेस भी अच्छी हैं, फ्रॉक में मेरी डॉल कम्फर्टेबल फील करेगी, ये शूज़ और फ्लिप फ्लॉप्स भी कम्फर्टेबल हैं। सारा सामान देखने के बाद आहान ने चाहत के पहनने के लिए कपड़े निकाले और उसे ऊपर ले गया। आहान बाथरूम के दरवाजे के पास आकर बोला, डॉल मैं तुम्हारे कपड़े बाहर छोड़ रहा हूँ, जब तुम नहाने जाओ तब ले लेना, और हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ओके आहान, चाहत ने अंदर से जवाब दिया। आहान के वहां से जाने के बाद चाहत बाथरूम से बाहर आई। उसने देखा बेड पर उसकी जरूरत का सामान और साथ में एक वाइट कलर का नी लेंथ फ्रॉक रखा हुआ था, जिसकी लॉन्ग बलून स्लीव्स थी और ऊपर से नेक भी बंद था। काश आप हमेशा ऐसे ही रहते तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती आहान। यही आपका असली चेहरा है जो गुस्से के पीछे दब गया है। कोशिश करूंगी कि फिर से उसी आहान ओबेरॉय को वापस ला सकूं, जो सच में बहुत अच्छा इंसान है, चाहत धीरे से बोली और बाथरूम में चली गई। लगभग 10 मिनट बाद वह नहाकर तैयार हो चुकी थी। चाहत ने आहान कर दिया हुआ ड्रेस पहन लिया था जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने बालों को खुला कर रखा था और चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया था ताकि कल रात के निशान को छुपा सके। तैयार होने के बाद चाहत नीचे गई तो आहान उसे इसे गार्डन एरिया में लेकर गया। टेबल को उन लोगों ने फूलों और बाकी चीज़ों से डेकोरेट कर दिया था। उन स्पेशल अरेंजमेंट्स को देखकर चाहत के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आहान की तरफ देखकर उसे थैंक्स कहा। इसके लिए मुझे थैंक्स मत कहो डॉल, ये मैंने नहीं किया। मुझे किसी चीज़ के लिए थैंक्स कहना है तो खाना खाने के बाद कहना, क्योंकि ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, आहान ने सिर हिलाकर कहा। उसे वैसे भी किसी और के किए हुए काम का क्रेडिट लेना पसंद नहीं था। उसने चाहत के लिए चेयर पुल की और फिर उसके बैठने के बाद उसे खाना सर्व करने लगा। चाहत ने खाना टेस्ट किया तो वो वाकई काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। उसने आहान की तरफ देखकर कहा, अब तक मुझे लगता था कि मेरी मम्मा दुनिया का बेस्ट खाना बनाती है, लेकिन कहना पड़ेगा आप उन्हें अच्छा कंपटीशन दे सकते हो। हाँ, मैंने अपने गुस्से को काबू करने के लिए कुकिंग सीखी थी, तनु ने कहा था ये काम करेगा। कुछ दिन तो काम किया लेकिन बाद में मुझे खाने की चीज़ों पर ही गुस्सा आने लगा, आहान ने हंसते हुए बताया। आज उसका मूड काफ़ी नॉर्मल था। अच्छा बताइए ना, आपने अपने गुस्से को काबू करने के लिए और क्या क्या सीखा है, चाहत ने उत्सुकता के साथ पूछा। आहान को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये इंसान एक परफेक्ट आदमी है जिसे दुनिया का सारा काम आता होगा,
आहान ने चाहत को बताते हुए कहा। सबसे पहले मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखे, गिटार, वायलिन, पियानो और बाकी सब। ये भी कुछ टाइम के लिए ही काम करते हैं। फिर पेंटिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, डांसिंग, कुकिंग, लैंग्वेज लर्निंग, अलग अलग तरह के गेम्स खेलने, सब कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन जब तक इन्हें सीख नहीं लेता तब तक गुस्सा नहीं आता था। एक बार सीखने और परफेक्ट होने के बाद ये मेरा गुस्सा 10 मिनट के लिए भी काबू नहीं कर पाते थे। यूं समझ लो कि इन्हें सीखने टाइम इन्हें सीखने के जुनून में मेरा ध्यान भटक जाता था। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये मेरा गुस्सा कम करने में कोई भी काम के हैं। अच्छा, तो एक बार कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर आपका उससे मन भर जाता है, कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं होने वाला ना, अचानक चाहत के मुँह से निकला और फिर वो चुप हो गई। आहान की अब तक की केस स्टडी में यही निकल कर आया था कि कुछ समय बाद उसका चीज़ों से मन भर जाने के बाद वो चीज़ उसके गुस्से को काबू नहीं कर पाती थी। चाहत को डर था कि किसी दिन आहान का दिल उससे भर गया तो वो उसे ना नुकसान पहुंचा दे। आहान को गुस्सा ना आ जाए इसलिए चाहत ने बात को संभालते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आई एम सो सॉरी, मैं बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी। कोई बात नहीं डॉल, मुझे तुम्हारी बातों से गुस्सा नहीं आता, तुम मुझे जो चाहे कह सकती हो, बस जब तुम मेरी आंखों से दूर चली जाती हो तब मेरा खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। तुम सच कह रही हो, एक मोमेंट के बाद मैं लोगों से बोर हो जाता हूँ, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कितना भी देख लूँ मेरा दिल कभी नहीं भरेगा। रही बात तुम्हें पाने की, तो गलत तरीके से ही सही, मैं पहले दिन ही तुम्हें पा चुका हूँ, तो डरो मत, मेरा तुमसे दिल नहीं भरेगा, आहान ने सीधे सीधे जवाब दिया और फिर खाना खाने लगा। चाहत जब भी आहान के आसपास होती थी तो उसे गुस्सा नहीं आता था, वो चीज़ों को नॉर्मली हैंडल करने की कोशिश करता था। उन दोनों की ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आहान के पास तनु का कॉल आया। उसने उसे आयुष की हेल्थ अपडेट देने के लिए कॉल किया था। तनु ने कॉल पर कहा, आहान, आयुष की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है और उससे यही पता चला है कि उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। उसके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हुए थे जिससे पता चला है कि उसने काफ़ी टाइम अकेले बिताया है, बचपन में भी और फिर बड़े होने पर भी। अकेलेपन में उसे पहले सुसाइडल थॉट्स आते थे, बाद में चीज़ें बदलती गईं तो उसे ये लगने लगा कि आसपास की चीज़ उसे खाने के लिए दौड़ रही है या उसे जान से मार देगी। उसकी सिचुएशन अभी ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, कंट्रोल की जा सकती है, पर उसका एक ही तरीका है, आहान, तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उसे अपने घर पर सेटल करना होगा। तनु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम से परेशान हो चुका हूँ, ऐसे में मैं आयुष को अपने घर कैसे ला सकता हूँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा, आई प्रॉमिस, लेकिन वो मेरे घर पर नहीं रह सकता, यहाँ डॉल मेरे साथ रहती है और, आहान बोलते हुए रुक गया। उसने महसूस किया चाहत उसकी बात गौर से सुन रही थी। कुछ पल सोचने के बाद आहान ने तनु से कहा, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ और डोंट वरी, मैं आयुष को ठीक करके रहूँगा, उसकी हालत मेरे जितनी ख़राब कभी नहीं होगी। आहान के लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी क्योंकि एक तरफ उसकी मॉम ठीक नहीं थी तो वहीं दूसरी तरफ आयुष को भी इस वक्त किसी अपने की ज़रूरत थी। आयुष को अपने घर पर लाने के लिए आहान को चाहत से खुद से दूर करना पड़ता और ये होने पर आहान की हालत फिर से ख़राब हो जाती, ऐसे में उसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था।